रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृपा सिंधु भगवान सागर के किनारे आ गए बंदरों के साथ, और बानर बड़े आनंद से पास के वनों में जा जाकर खूब प्रेम से फल भक्षण कर रहे हैं। इधर जब से हनुमान जी लंका को छोड़कर आए, तब से लंका के प्रत्येक राक्षस के मन में बड़ी शंका होने लगी, ये कौन आदमी है, कौन ये बंदर आया था। आपस में सब विचार करते हैं कि अब हमारा लंका में जीना दूभर हो गया। कोई कहता है कि ये तो सीता के पति का दूत है, अरे जिसके दूत में इतना बल है वो आएगा तो हमारी क्या दशा होगी। ऐसे लोग बातें करते हैं और ये सब समाचार नगरवासी मंदोदरी तक पहुंचाते हैं। मंदोदरी को ये बातें सुनने को मिली, तब मंदोदरी एक दिन पति के पास एकांत में जाकर चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े नीति रस से सनी हुई वाणी बोलने लगी, हे प्राणनाथ, आपने कभी विचार किया कि नहीं आप किनके साथ बैर कर रहे हो। हरिशन परिहर, आप जो कर्ष कर रहे हो, बैर कर रहे हो, ये भगवान के साथ कर रहे हो। सर्वशक्तिमान भगवान के साथ बैर आपका कितना निप पाएगा। मेरे कहने से आप इस हितकारक बात को अपने हृदय में धारण कीजिए। आप विचार कीजिए कि वे भगवान कितने दयालु हैं कि जिन्होंने यहां दूत के द्वारा इतना इतना काम करा करके आपको सावधान करवाया है। भरी सभा में आकर इतना आपको डांट दे, फटकार दे, लंका को जला डाले, आपने इस बात को यूं ही ले लिया। आपने नगर में मालूम नहीं किया कि जिस समय वो पर्वत से उड़कर के आकाश में जा रहा था तो कितने निशाचरियों के गर्भ गिर गए। उस दूत की ये करनी है, ये क्या किया। अभी भी मौका है, आप अपने श्रेष्ठतम मंत्री को बुलाइए और यदि लंका की सबकी भलाई चाहते हो, अपने कुल रूपी कमल के वन में यदि आप बढ़िया खेती चाहते हो तो उस मंत्री के साथ ये जो शरद रात्रि की शरद ऋतु की रात्रि के समान आई हुई सीता को उसके साथ ही भेज दो। सीता को भेज दो और उनसे जाकर कह दो मंत्री से कि वो जो है सीता को दे देवे, क्षमा याचना कर ले कि साहब आ गए, कोई बात नहीं, आपकी स्त्री रखो। पर याद रखना, जब तक आप सीता को नहीं लौटाओगे तब तक आपके ऊपर आने वाले संकट को न ब्रह्मा जी टाल पाएंगे और न शंकर जी टाल पाएंगे। क्या दशा होगी वो मेरे मन में अभी एकदम सामने तस्वीर की तरह दिख रही है कि राम बाण अहि गण सरिस, भगवान के जो बाण है वो सर्प के समान होंगे। निकर निसाचर भेक, और ये आपके जितने राक्षस हैं ये भेक माने मेंढक के समान है, सांप यूं खाता है, यूं मेंढक को खाता है। ऐसे राम जी के बाण तो सांप के समान, आपके जितने राक्षस वो और मेंढक के समान है। जब तक वो मेंढक को खाने जाए उससे पहले पहले आप जो इन राक्षसों की रक्षा करो तो कर लो, और उसका करने का एक ही उपाय है, सीता को लौटा दो। इतना अभिमानी रावण मंदोदरी की बहुत हितकारक नीति सम्मत और लंका की रक्षा की बात सुनकर के भी वो दुष्ट पिघला नहीं और उल्टा कहने लगा, अरे मंदोदरी ये मंगल का समय है और तेरा मन इतना कच्चा हो गया। स्त्रियों के स्वभाव में भय तो रहता ही है, सब लोग बोलते हैं स्त्रियों के स्वभाव में भय रहता है, मैं भी तो देख रहा हूं तुम्हारे मन में इतना इतना भय बैठ गया। इस मंगलमय वेला में तुम भय देख रही हो, तुम्हारा मन भी बड़ा कच्चा है। इतने रावण की पत्नी होकर, वीर पत्नी होकर इतनी अधीर हो रही हो? अच्छा बंदर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? बंदर आ जाएंगे तो होना क्या है? बंदर आ जाएंगे तो हमारे जितने राक्षस हैं सब उनको खा जाएंगे, बंदरों को खा जाएंगे बेचारे। कुछ दिन राक्षसों को हमारे लंका का खाना पीना बचेगा और बंदरों को खा खा करके अपना समय निकालेंगे। बड़ा आश्चर्य इस बात का है, तुम तो मुझे बता रही हो कि वो राम है जैसे, अरे मेरी तरफ नहीं देखती तुम, मैं संपूर्ण लोक पालों को अपनी हुंकार से डरा देने वाला हूँ। एक बार मैं आंख से ही तिरछा देख लेता हूँ तो बड़े बड़े लोकपति मेरे सामने कंपित होते हैं। उस रावण की नारी होकर के और तुम इतनी डरती हो, ये बड़े हंसी की बात है, आश्चर्य की बात है। मंदोदरी को ऐसा आश्वासन दिया और वो सभा की तरफ चला गया। मंदोदरी बैठकर सोचने लगी क्या करें। जैसे कोई मरणासन्न व्यक्ति होता है उसको कुपथ्य अच्छा लगता है, मरने वाला होता है वो ये लाओ ये लाओ ये लाओ, उसको कुपथ्य अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे प्राणनाथ के क्या हो गया, इनके दिलमान खराब आ गए। उधर रावण सभा में जाकर बैठा और बैठा हुआ पूछता है मंत्रियों को, सबको बुला करके, मंत्रियों हमने सुना है सागर के उस पार राम की सब बांदरी सेना इकट्ठी हो गई है, बोलो अब क्या करना चाहिए। तो रावण के ही खुशामदी करने वाले मंत्री वे कहने लगे, क्या हो गया, क्यों ये बात छेड़ती, क्यों है बंदरों की आप, बंदर आ गए वो आ गए, क्या है, हम सब उनको नष्ट कर देंगे महाराज, आप क्या इतना विचार करते हो, आपने देवताओं को असुरों को और सर्पों को सबको जीत लिया। ए मनुष्य और बंदरों के लिए आप इतना क्या विचार करते हो, छोड़िए आप इन बातों, बड़े मीठे मीठे वचन बोलते हैं। तो कहते हैं सचिव बेद गुरु तीन जो प्रिय बोलै भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। एक तो मंत्री और एक बैद जी और एक गुरु जी, तीन यदि मीठी बात करा रहे, नहीं तू ठीक हो जाए तू क्यों चिंता कर रहे, राम नाम ले बस, राम राम कर तो दो चार दिन में ठीक हो जाए, ना समझ लो कि वो दो चार दिन में ठीक होने वालों ही है, रवे नहीं। ऐसे ही मंत्री है, मंत्री यदि राजा को मीठी मीठी बात कहेगा तो उसका राज चला जाएगा। भय आस, किसी भय से और किसी आशा से, लोभ के कारण से ये तीनों व्यक्ति यदि मीठा बोलते हो तो इसमें खतरा समझना चाहिए। डॉक्टर बैद कह देवे ना कि अब भाई इनको घर ले जाओ, तो उनको तो समझा दे वो घर ले जाओ, उस रोगी को कहेंगे देख अब तो ठीक हो गया, अब तू घर जा आराम से, तो ठीक है बस, अब कोई चिंता मत कर, इकट्ठे ठीक हूँ, मार तो बहुत तकलीफ है, कहना नहीं आज तकलीफ मिल जाए तू घर जा आराम से। तो सब लोग समझते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो सचिव बैद और गुरु, गुरुजी देखे कि मैं इन घणो ही समझा दियो, माने नहीं आज भी थारे मर जावे जीव कर, तो बीरो धर्म नष्ट हो जावे। तो राज धर्म और तीन, ये तीनों बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें एक बात है, सचिव के मीठा बोलने से, भय के कारण से मीठा बोलने से राज जाता है, और वैद के मीठा बोलने से शरीर जाता है, और गुरु मीठा बोलता है तो धर्म जाता है। यहाँ उल्टा दे दिया, सचिव वेद और गुरु, तो राज तन और धर्म ऐसा होना चाहिए, पर राज धर्म तन ये विपर्य क्यों हुआ, ये रावण उल्टा चलता है। इसलिए ये रावण का जो टेढ़ापन है ना, वो टेढ़ापन गोस्वामी जी महाराज इस दोहे में बताते हैं। रावण को सोई रावण कहूं बनी सहाय, रावण को ये बाद अच्छी लग रही है, हा जो कितनी अच्छी बात है, अरे अच्छी बात नहीं है, तेरे सचिव बोल रहे हैं तेरे डर के कारण से, पर वो रावण उसको अच्छी बात मान रहा है। विभीषण जी आए, विभीषण जी महाराज आकर के अपने भाई का सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने आसन पर बैठते हैं, और रावण से आज्ञा लेकर कहते हैं कि महाराज मेरे मन में कुछ बात आई है, तो आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूं कि कहो, महाराज मेरी बुद्धि से कहता हूँ लेकिन आपके हित की बात कहता हूँ, आप विचार करो कि ये आपको हमको मानव शरीर मिला है, क्यों मिला है, कल्याण करने के लिए मिला है, तो यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो अच्छा कल्याण चाहते हो, सुयश चाहते हो और नाना प्रकार का सुख और आराम जो आप चाहते हो, तो सबसे पहला काम तो यह है कि आप ये दूसरे में मन लगा रही स्त्री का, सीता का, आप उसी प्रकार से त्याग कर दो जैसे चौथ के चांद को देखा नहीं करते हैं, चौथ के चांद की छाया भी नहीं, चौथ के चांद को देखते तक नहीं है। ऐसे ही आप सो परनार लीलार गोसाई, देखो दूसरे की स्त्री का ललाट तक भी नहीं देखना चाहिए, आपको इसी समय सीता को लौटा देना चाहिए। और जो आदमी सब लोगों से बैर विरोध कर लेगा तो वो जगत में रह भी नहीं सकेगा, 14 भुवन एक पति होई, सारे 14 लोकों का जो एकमात्र स्वामी है उसके साथ आप द्रोह करोगे फिर आपकी स्थिति रहेगी कैसे। थोड़े से लोभ के कारण से कोई आपको भला नहीं कहेगा। आप विचार करो महाराज मनुष्य के लिए पतन करने वाले कितनी चीजें हैं, कि चार चीजें हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ। ये सब नरक के दरवाजे हैं महाराज। और पतन होने में तो चार चीज है, उत्थान करने में केवल भगवान का भजन है। सब परिहरि रघुवीर ही और भजौ भजई जही संत। काम के मार्ग पर आप चलते हो तो कामियों का अनुसरण करते हो, क्रोध के मार्ग पर चलते हो तो क्रोधियों का अनुसरण करते हो, लोभ के मार्ग पर चलते हो तो लोभियों का अनुसरण करते हो, और भगवान के भजन के मार्ग पर चलोगे तो आप संतों का अनुकरण करने वाले बनोगे। तो ये अवसर बार बार थोड़ा ही आता है, इसलिए संतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके भगवान का भजन करना चाहिए। हे तात, आप राम को केवल एक मनुष्य मान करके मत चलो। वे संपूर्ण भुवनों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। निर्गुण निराकार दृष्टि से देखा जाए तो वो ब्रह्म है, अनामय है, कोई उनके वहां विकार शोक कुछ नहीं होता। अज है, भगवान है, व्यापक है, अनादि है, अनंत है। वो तो केवल गायों के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, पृथ्वी के हित के लिए, संतों के हित के लिए केवल मनुष्य शरीर धारण किया है। भक्त लोग उनकी कथा सुने इसलिए उन्होंने ये अवतार लिया है, वेद धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। ऐसे भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए भाई साहब। मैं आपके चरणों में मस्तक रख करके प्रार्थना करता हूँ कि आपको उनके चरणों में जाकर अपना मस्तक रखना चाहिए, उनसे बैर हटा करके शरणागत हो जाना चाहिए और सीता जी उनको लौटा देनी चाहिए और लंका में बैठ करके अब आपको केवल भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी शरण में जाने के बाद वे कभी आपका त्याग नहीं करेंगे, किसी का भी त्याग नहीं करते, चाहे वो सारे संसार से दुष्टता भी कर चुका हो, बहुत पापी हो, विश्वद्रोह कृत अग जेही लागा, सबसे बैर विरोध करके पाप खूब चढ़ा लिया, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के शरण में चला जाएगा तो भगवान उसको माफ कर देंगे। मैं आपसे बार बार चरणों में पढ़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मान, मोह, मद, अहंकार सबको छोड़ करके हमारी बात मानी है। और अभी अभी हमारे पास पुलस्त्य मुनि का शिष्य आया है, उसने पुलस्त्य मुनि का संदेश सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जाकर रावण से ये संदेश सुनाओ कि जल्दी से जल्दी सीता राम को सुपुर्द कर दे रहे। तुरंत सो मैं प्रभु सन कही, मैंने आपको बता दी है, अब आपको जो करना है सो कीजिए। अब आप सोचेंगे कि विभीषण जी आज कैसे बोल रहे हैं शरण होने की बात, इतने दिन क्यों नहीं बोले? तो इतने दिन में बात यह है कि विभीषण जी महाराज चाहते तो थे यही, पर विभीषण जी महाराज को कोई भगवान के भक्त का सत्संग नहीं मिला। सत्संग न मिलने के कारण से अंदर की बात अंदर ही रह गई। हनुमान जी का उनके साथ सत्संग हुआ ना, तब उनके मन में शरणागति की भावना पैदा हुई। विभीषण जी महाराज ने पहले भी मना तो किया था रावण को, पर इतनी जोर से मना नहीं किया। हनुमान जी का सत्संग करने के बाद फिर विभीषण को बड़ा बल मिल गया। वहीं पर माल्यवान थे रावण के नाना, जो मंत्री का भी काम देखते थे, वे उस सभा में खड़े हो गए और कहने लगे, बेटा रावण, विभीषण ने जो बात कही है वो नीति से विभूषित बात है, ये सब नीतियों का सार बोल रहा है, तुम इसकी बात को हृदय में धारण करो। रावण तो क्रोध में डूब गया, और क्रोध में डूबता हुआ कहने लगा, अरे तुम दोनों के दोनों बड़ी दुष्टता करते हो, भरी सभा में रावण के सामने रावण के शत्रु का उत्कर्ष का बखान करते हो, उसकी महिमा बताते हो, तुम्हारी जीत गल नहीं जाती, दूर करो इन दोनों को यहां से, मेरी आंखों के सामने रहने नहीं चाहिए। विभीषण तो वो माल्यवान तो चले गए अपने घर, ये बात मानने वाला तो है नहीं। विभीषण जी ने फिर थोड़ा साहस किया और विभीषण ने कहा कि हे महाराज, मनुष्य के हृदय में कभी खराब विचार भी आते हैं, कभी अच्छे विचार भी आते हैं, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, ये पुराणों की कही हुई बात, शास्त्रों की कही हुई बात है। खराब विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, परंतु ये बात समझिए कि जहां अच्छे विचार के अनुसार आप यदि चलोगे तो आपको जीवन में अनेक प्रकार का सुख मिलेगा, और जहां आप खराब विचार के साथ चलोगे तो वहां अनेक प्रकार की विपत्ति आएगी। इस समय हम आपको जो हित की बात कहते हैं वही आपको अनहित की बात लगती है, जो आपका प्रेमी है उसी को ही आप शत्रु मानते हो, राम जी को आप शत्रु के नाम से मानते हो, राम जी तो सारे संसार से प्रेम करने वाले हैं, और जो सारे निशाचरों के लिए काल रात के समान है उस सीता से आप प्रेम करते हो। तेई सीता पर प्रीति घनेरी, घनेरी माने घनी सारी, सीताओं तो थे तो प्रेम करो, और राम जी ने थे शत्रु मानो, तो सारी थारी बात उल्टी उल्टी हो रही है, क्योंकि थारे मन में अबार खराब बुद्धि जो पैदा हो रही है, थे भी खराब बुद्धि रो आश्रय ले लियो। इसलिए मैं आपने बार बार प्रार्थना करूं, मारो लाड राखो, और लाड राख करके और मने प्रसन्न देखना के लिए वास्ते आप सीता जी है राम जी दे दो, ताकि आप नुकसान नहीं हो। विभीषण जी की बात ही ए नीति सुम भरोड़ी ही, वेद सम्मत बात ही, बुद्धिमान लोगों की बात ही, सब बढ़िया बात ही, पर रावण ने यह बात अच्छी नहीं लगी। रावण भी टाइम रीस ने मायने खड़ो हो, जोर जोर से भरी सभा में धमकाते हुए बोलने लगे, अरे दुष्ट, अब लागे थारी मौत आ गई है, तने ठा नहीं है कि मरने वालों आदमी वैद्य वो किया बोलिया करे है, तू मरना है, हाल तक मैं ही तने जीवा जीवा राख्य हूं, तू शत्रु रो पक्ष लेवे तने शर्म ही नहीं आवे, तू आ बता इस संसार में मारे बुझारे सामने कुन टिक सक्यो है, बता आज तक वो रावण कदे कोई सो हारियो है, मारे ही लंका में मारी कृपा सु तू रह रियो है, और थारो हृदय राम के साथ जुड़े है, जा ए दुष्ट तू ब्याने साथ ही मिल जा, अरे थारी जो है कुनीतियां ब्याने ही सीखा, मारे तो फायदो ही है, हर जड़ा री नीति में मानी तो मार तो फायदो ही फायदो है, क्यों मैं उल्टा दुख में फंसी, जा निकल जा, इतो कह और रावण मेरे लात मारी, लात मारी, जना विभीषण जो है पाछो के लागो कि भाई थे मारे बाप रे बराबर हो, लात मार सको थारे साथ में मैं ऐसो बर्ताव थोड़ी करो जो थे मारे साथ करो, भले ही मारू, परंतु मैं तो आपने एक इस बात कहूं कि भगवान रो भजन करने में ही आप रो हित है। शंकर भगवान कहता कहता मुग्ध हो गया कि देख पार्वती संतारो स्वभाव देख, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, संत की पहचान ऐसा मौका पर ही हुए, कोई आदमी आप लोग बुरो करे तो बुरारे साथ में भलो करे, बुरारे साथ में भलो करे, जन भी संतरी पहचान हुए। तो रावण आज्ञा दे दी कि जाओ ब्यारे साथ मिल जाओ और थारा वचन है थारी नीतियां ब्याने ही सुनाओ। तो विभीषण भी कोई कम मामूली नहीं था, विभीषण भी बड़ा मायावी था। अपने खास विश्वस्त उसके पास में जो मंत्री थे उनको साथ में लेकर के विभीषण आकाश में चला गया। आकाश में जाकर के और फिर चेतावनी से कहने लगा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। रावण मैं अब भगवान के पास जा रहा हूँ, राम जी की शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष मत देना कि मेरे यहाँ रहने वाला मेरा भाई मेरे से विपरीत मेरे शत्रु के वहां चला गया। बोलना नहीं, क्योंकि तुम ही मुझे कह रहे हो कि जाओ उनके पास चले जाओ, सठ मिल जाओ तिनाऊ कहीं नहीं, उनके साथ मिल जाओ और उनको नीति कहो तो अब तुम्हारी आज्ञा हो गई। मेरी बात आपने नहीं मानी, राम जी के शरण होने की बात मेरी आपने बात नहीं मानी, लेकिन आपने मुझे कहा कि तुम जाओ रावण की तो राम की शरण में जाओ। सचिए माने आपके मन पर ये असर नहीं होना चाहिए कि लंका का राज्य लेने की इच्छा से मैं ये बात बोल रहा हूँ। भगवान की शरण की बात चाहे आप मुझे कहो चाहे मैं आपको कहूँ, बात की कीमत है। आप मुझे कह रहे हो कि तुम चले जाओ तो ये चला, मेरी बात तो आपने नहीं मानी लेकिन आपकी बात मैंने मानी है, जो मानने योग्य बात होती है। सत्य संकल्प भगवान के शरण में जा रहा हूँ, आपकी सभा अब काल के वशीभूत हो रही है और अब मुझे आप किसी प्रकार से दोष मत देना। विभीषण जी महाराज इतना कहकर के रवाना हो गए। तो ज्यों ही विभीषण जी महाराज वहां से रवाना हुए त्यों ही लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद अब हमारा थोड़ा ही दिन जिंदगी का है, आयु ही न भय सब तब ही। देखो पार्वती, संत की अवज्ञा करने का सबसे बड़ा दोष क्या होता है, उसके हाथ से कल्याण की बाजी निकल जाती है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, सब कल्याण के रास्ते बंद हो गए। इसलिए संत महापुरुषों की बात का आदर करना चाहिए। रावण ने जो ही विभीषण का त्याग किया, रावण का तेज खत्म हो गया, रावण का तेज खत्म हो गया, प्रभाव खत्म हो गया। वो दुर्भाग्यशाली रावण और तेज तेजोहीन होकर के वहां रहने लगा। इधर विभीषण भगवान के पास आता है तो अनेक प्रकार के मनोरथ करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब व्यक्ति भगवान की तरफ चलता है तो उसके मन के अंदर भगवान की बातें पैदा होती है। आज हम कहते हैं कि क्या बताएं, भगवान की तरफ चलना तो चाहते हैं लेकिन मन में और ही और बातें आती हैं, संसार की बातें आती हैं। क्यों आती है कि हम संसार को भीतर से पसंद करते हैं ना, हमारी रुचि है संसार में जाने की, इसलिए मन तो रुचि के पीछे चलता है। तो रुचि तो है संसार की, मन को लगाना चाहते हैं भगवान में। हमारे विभीषण जी महाराज की बात देखो, उनकी रुचि हो गई भगवान की तरफ जाने की, तो उन्होंने जो भी मनोरथ किया वो भगवान का ही मनोरथ किया, भगवान का मनोरथ। करत मनोरथ बहु मन माही, क्या मनोरथ कर रहे, अब मैं जाऊंगा और कमल के समान भगवान की कोमल कोमल चरणों में शीश नवाऊंगा। सो सेवकों को सुख देने वाले भगवान, जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था और दंडक वन में जो कोमल चरण यहाँ जो है पवित्र करने के लिए विचरण कर रहे थे, उन उन चरणों के जाकर दर्शन करूंगा। और और जनक जी महाराज की पुत्री सीता जी जिन चरणों का हरदम ध्यान करती है। कपट कुरंग संग धर धाये, ध्यान देओ सीता जी कपट से मृग बने हुए मारीच के पीछे दौड़ते हुए भगवान के चरणों का ध्यान करती, ऐसे से भगवान गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि सीता जी भगवान के चरणों में ही दृष्टि रखती थी। कपट कुरंग संग धर धाये, मृग के पीछे पीछे राम जी जा रहे थे ना, उस समय सीता जी ने केवल उनके चरणों पर ही दृष्टिपात रखी। इतना राम जी के चरणों में प्रेम था सीता जी का, उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। ओहो अहो भाग्य में देखिए हूँ जाए आखिर, अहो भाग्य देखो मेरा, उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों के लिए भगवान शंकर का हृदय है। वो तो है सरोवर, और भगवान का चरण क्या है उसमें कमल। हर उर सर सरोज पद जे, अहो भाग्य में देखियहुं ते, उन चरणों का जाकर दर्शन करूंगा। और जिन चरणों के पादुकाओं को भरत जी महाराज अपने मन में ल करके और अयोध्या में जाकर स्थापित किए, उन चरणों का दर्शन करूंगा। इन आंखों से, जिस आंख से मैंने लंका के कैसे कैसे पापियों के दर्शन किए, और जिस आंख से मैंने रावण के दर्शन किए, अब इन आंखों से मुझे भगवान के दर्शन होंगे, तो भगवान की कृपा हो गई। इन नए नए नहीं बुझा, ऐसे भी विचार कर रहे थे, इतने में ही समुद्र लांग गए। अब देखो राम जी ने, ये विभीषण जी ने समुद्र लांगा तो कोई नहीं बोलता, कोई कई विशेषतानियां दे, ओहो कैसे समुद्र को लांग गए। रावण सीता को लेकर के, सीता सहित रथ के ऊपर से यूं ले गया सीता जी को, कोई उसकी महिमा नहीं गाते। लेकिन हनुमान जी महाराज जब चले गए तो न तो उनके पास कोई रथ था, न उनके साथ में दूसरा कोई सहायक था। विभीषण जी के साथ तो 5-4 उनके मंत्री भी तो थे, खुद भी थे, और रावण का तो रथ भी था। उस रथ को हांकते हुए रावण ले गया था उठा करके। बड़ी बात देखी जाए तो रावण की विभीषण की है, परंतु रावण विभीषण का समुद्र लंघन का कोई महत्व नहीं है हनुमान जी महाराज के लिए। गो हनुमान जी ने समुद्र कैसे लांगा, राम जी पूछते हैं, अरे तूने समुद्र कैसे लांगा, अरे समुद्र कैसे लांग लिया। रावण के लिए आश्चर्य नहीं करते हैं कि वो रावण कैसे समुद्र लांग, कहीं राम जी ने आश्चर्य नहीं किया, न बंदरों ने आश्चर्य किया, किसी ने भी आश्चर्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान का काम किए ना, इसलिए उस काम की महिमा बढ़ गई। रावण ने समुद्र लंघन किया अपने स्वार्थ के लिए किया, विभीषण ने किया तो अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन हनुमान जी ने किया वो भगवान की सेवा के लिए किया। इसलिए जो काम छोटे से छोटा भी हो, यदि वो भगवान का समझ के किया जाता है तो उस काम में बड़प्पन आ जाता है, उस आदमी में भी बड़प्पन आ जाता है। घर धन घर का काम धंधा करो तो भगवान का समझ के करो, घर का काम धंधा मत समझ के मत करो। भगवान का घर है ये, इसकी हमको सेवा करनी है। तो आयो सपदी, सपदी का अर्थ बहुत जल्दी, संस्कृत में बोलते हैं सपदी मन बहुत जल्दी। आयो सपदी सिंधु है ही पार, कहीं कोई महिमा नहीं आ रही है। इधर बंदरों ने देखा कि कोई उधर से आया है, रोक दिया, मैं कौन हो, मेरा नाम विभीषण है। कौन विभीषण? हनुमान जी ने कहा विभीषण को तुम्हें अरे हाँ हाँ हनुमान जी आपने विभीषण के लिए कहा था, वो विभीषण रावण का भाई। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरी पुदूत विशेषा, तो रोक दिया ठहरी ताई राख। विभीषण जी वही खड़े रहे आकाश में, देखो खड़े रहना ये और भी मुश्किल काम है, खड़े रहे। और सुग्रीव जी के पास आए, महाराज जिस विभीषण की हनुमान जी ने चर्चा की थी वो विभीषण जी आए साथ में, इनके साथ में चार और सेवक भी। अच्छा अच्छा, तो विभीषण जी ने कहा, ओ सुग्रीव जी ने कहा, हम भगवान से पूछते हैं। भगवान के पास गए, हे रघुनाथ जी, रावण का दशानंद का भाई, दशानंद का भाई आया है। दशानंद शब्द दिया है या क्यों? नाथ दशानन यह गति की नी ते खल जनक सुता हरिलीनी। ये दशानन ने महाराज मेरे पांख काटे, जटायु जी बोल रहे थे। वो दशानन शब्द है, वो भगवान ने पहली बार सुना था जटायु के मुख से। सुग्रीव कहते हैं, महाराज आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का भाई आया मिलने के लिए। तो भगवान मुस्कुराए, अच्छा फिर क्या क्या पूछते, क्या हो पूछते, क्या लाओ, आपकी क्या रीति, आपकी क्या नीति है, आप क्या चाहते हो? है महाराज बड़ी बड़ी आफत में अटकावा से लमगावा, ए राक्षस लोग कायदा कहीं कहीं माया करी, ए बैठे बैठे कहीं रूप बना ले, कहीं पतो नहीं है काल में आपने सेना रमाई ने आ जावे और झूठी साची बात बिठा देवे, आपने लड़ा देवे, सेना ने भड़का देवे और आपने कहीं था कोई भेद ले चुपचाप बठिन चला जावे, तो बहुत जो है समय है, बड़ो सावधानी रहो समय है महाराज। मैं तो कहवा कि या तो इन्हें ढूंढ भगा दो, नहीं तो आप आज्ञा दो, मैं इन्हें बांध रहे कैद खाना में राख दिया, मार का नहीं राखिए बांध मोई असभाव। राम जी कहे, सुग्रीव जी आपने नीति तो बहुत अच्छी कही, नीति तो यही कहती है, पर यहां हम संसार में केवल नीति का निर्वाह करने थोड़ी आए हैं। सुग्रीव जी मेरा प्रण कोई दूसरा ही है, देखो मेरा प्रण देखो तुम, दशरथ जी ने मेरी सौगंध खाई, मेरा प्रण लिया, दशरथ जी की बात रखी, तो बताओ अब मेरा प्रण ये क्या है कि ममपन शरणागत भय हारी। शरणागत का भय दूर करना ही मेरा प्रण है, मेरे शरण में आ गया। ये शरणागति वाली बात सुनी तो बस हनुमान जी महाराज को बहुत खुशी हुई। हनुमान जी महाराज है ना, अपनी पूंछ को उछाले लगे, पूंछ को चूमे, पूंछ को उछाले लगे, अरे भगवान तो शरणागत वत्सल है, हम यूं ही बिना मतलब ही भगवान के लिए कष्ट पा रहे कि भगवान कैसे मिलेंगे, क्या होगा। शरणागत भगवान है, शरणागत भगवान, शरणागत वत्सल भगवान है। बड़े हनुमान जी आनंदित हुए। फिर भगवान ने कहा, देखो सुग्रीव जी, शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मया तिनहि बिलोकत हानि। जो व्यक्ति शरणागत की इसलिए रक्षा नहीं करता कि इसकी रक्षा हम करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा समझ करके शरणागत व्यक्ति का तिरस्कार करता है, उसके समान संसार में कोई पापी नहीं है। ऐसे व्यक्ति का तो मुंह देखने में ही पाप आता है। सुनो सुग्रीव जी, हमारी स्वभाव की बात सुनाए, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को मारने वाला महान पापी, एक ब्राह्मण को मार दे तो भी महापाप लगता है, करोड़ों ब्राह्मणों को कोई मार दे और हमारी शरण में आ जाए, हम उसका त्याग नहीं कर सकते। अरे आप ये बात करो, सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अज्ञास ही तब ही। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप लिया हुआ जीव यदि किसी प्रकार से मेरे सामने आता है, उसी समय में उसके पाप मेरे सन्मुख होते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे पापी आदमी मेरे सामने आ नहीं सकते, मेरा भजन भी उनको अच्छा नहीं लगता है, मेरे भजन की बात फालतरी बात है, ए निठल्ली बात है, भगवान रो भजन करो और सब फालतरी बात, ऐसा दो ब्राह्मण आपने रोटी रो साधन कर रखे, भगवान ने तो आडे कर लिए और आपका रोटी रोटी पकावे बेचारा बैठा। तो उन लोगों के मन में यही भावना आती है, भजन मोरते भावन का, परंतु यदि वो मेरे सन्मुख आ गया मेरे सन्मुख आने के बाद में फिर उसके पाप रह ही नहीं सकते। जिसके मन में निर्मलता रहती है उस वो व्यक्ति जिसके मन में छल छिद्र कपट कुछ नहीं होता मुझे बहुत प्रिय लगता है। क्यों डरो आप सुग्रीव जी? यदि किसी कारण से दशानंद ने भेद लेने के लिए विभीषण को भेजा भी है तो भी कोई अपनी हानि नहीं होने वाली। क्यों? अपनी बात सच्चाई पर है, सांस को आंच नहीं आती। देखो मेरे प्यारे मित्र सुग्रीव, जितने निशासन हैं संसार में लक्ष्मण सबको एक क्षण में भस्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अरे लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में है तो शेषनाग को थोड़ी सी डगमगाना है, उसको क्या करना है। तो लक्ष्मण हनाई निमख महु तेते, इसलिए ये बात तो है नहीं कि अपना कुछ बिगाड़ करेंगे। वो बेचारा किसी कारण से डरा हुआ आया होगा, इसलिए उसको यहाँ ले आओ और मैं जैसे मेरे प्राण की रक्षा करता हूँ ऐसे उसकी प्राणों की रक्षा करूंगा। यदि वो भेद लेने के लिए आया है तो कोई हर्जा नहीं है, और यदि भयभीत होकर के आया है तो भी अपने कोई हर्जा नहीं है। उभय भाते ही आना हो, दोनों ही प्रकार से ले आओ, कोई अपने को नुकसान नहीं है। ऐसी बात सुनकर के सुग्रीव जी भी कहने लगे, भगवान दया सिंधु भगवान राम की जय हो। अंगद जी भी कहने लगे, भगवान राम की जय हो। और हनुमान जी महाराज भी कहने लगे, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। सबने भगवान की जय जयकार की। अब विभीषण जी को ला रहे हैं। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की
जय
पवन सुत हनुमान की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की
जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की भक्तवत्सल भगवान
की जय
शरणागत वत्सल भगवान की
जय
आनंद कंद भगवान की
जय
रा